आस्तिक इस समय दरवाजे के पीछे खड़ा था। वो दरवाजे से झांकते हुए देख रहा था। आज फिर रोज की तरह उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। वो आदमी अभी अभी काम से लौटा और उसने आने के साथ ही अपनी टाई को ढीला करना शुरू कर दिया। तभी आस्तिक की माँ गुस्से में उस आदमी के पास आती है और कहती है, कहाँ थे इतनी देर से? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो आदमी गुस्से में खड़ा होता है और आस्तिक की माँ के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए कहता है, बीवी हो बीवी बनाकर रहो, मेरी मालकिन बनने की कोशिश मत करो और मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, अपने काम से कम रखो। ये कहकर वो आदमी बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। आस्तिक की माँ रोते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे जानने का हक है कि मेरा पति दिन रात कहाँ रहता है। उस आदमी के कदम बाथरूम के दरवाजे पर रुक जाते हैं और वो पलट कर आस्तिक की माँ के पास आता है और उसके बालों को पकड़ते हुए उसे बिस्तर पर धकेल देता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारा काम है सिर्फ मुझे बिस्तर पर खुश करना है, इसके अलावा तुम्हें मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है। और हाँ, तुम सिर्फ मेरी नाम के लिए मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, इसीलिए अपनी औकात में रहना। आस्तिक की माँ बिस्तर से खड़ी होती है और गुस्से में उस आदमी को देखते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमारा एक परिवार है, तुम उसे कुत्ते के लिए मेरा घर कैसे तोड़ सकते हो? तभी एक जोरदार थप्पड़ आस्तिक की माँ के गाल पर आता है और वो फर्श पर गिर जाती है। आस्तिक से अब देखा नहीं गया। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और अपनी माँ को संभालते हुए कहता है, माँ तुम ठीक तो हो ना? वो आदमी गुस्से में आस्तिक को देख रहा था। आस्तिक ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मत मारो मेरी माँ को। लेकिन उस आदमी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो आस्तिक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तभी आस्तिक की माँ बीच में आ जाती है और कहती है, नहीं, तुम मेरे बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते हो, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, पर खबरदार जो मेरे बच्चों को हाथ लगाया दो। उस आदमी ने आस्तिक के हाथ से पकड़ते हुए दरवाजे के बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। आस्तिक दरवाजे के बाहर रोते हुए सिर्फ अपने नन्हे नन्हे हाथों से उस दरवाजे को पीटे जा रहा था। इसके अंदर से उसकी माँ के चीखों की आवाज आ रही थी, आपकी कॉफी। अचानक से आस्तिक अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ गया था जो उसने बखूबी अपने अंदर समेट लिया था। आस्तिक ने चेहरा उठाकर देखा तो सामने अरुणिमा खड़ी थी अपने सादे से चेहरे के साथ। वो आस्तिक की कॉफी अपने हाथ में लेकर खड़ी थी। आस्तिक इस समय अपने कमरे की बालकनी में बैठा हुआ था। उसने अपना चेहरा घुमाकर नीचे गार्डन एरिया में देखा तो मिश्री गार्डन में पानी डाल रही थी। आस्तिक ने एक नज़र मिश्री को देखा और फिर अरुणिमा को देखा। शारदा जी के दोनों बच्चे उसके घर में नौकरों की जिंदगी जी रहे थे। आस्तिक ने अरुणिमा के हाथों से कॉफ़ी ले ली। अरुणिमा जाने के लिए मुड़ती है तभी आस्तिक कहता है, बैठो। अरुणिमा का दिल ठहर गया। वो पलटकर आस्तिक को देखती है लेकिन उसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए चुपचाप जाकर आस्तिक के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। आस्तिक धीरे से कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए अरुणिमा को देखता है और तभी उसे याद आता है जब उसने अरुणिमा को पहली बार देखा था। अरुणिमा अपनी सहेली के साथ कठपुतली का खेल देख रही थी और उसके चेहरे पर एक जिंदा दिल वाली मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर आज उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। उसकी आंखें मर चुकी हैं, उसका पूरा चेहरा मुरझाया हुआ है और पीला पड़ रखा है। अरुणिमा जब आस्तिक को खुद को ऐसे घूरता हुआ पाती है तो डरते हुए कहती है, क्या आपको कुछ चाहिए? आस्तिक ने न में सर हिलाया लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई कॉफी का कप वापस टेबल पर रखते हुए कहा, एक सवाल है मेरे दिल के अंदर जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। अरुणिमा घबरा जाती है कि अब पता नहीं आस्तिक क्या सवाल पूछेगा। उसने डरते हुए हाँ में सर हिलाया। आस्तिक उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए पूछता है, अगर मैंने तुम्हारे पेट पीछे तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें इस बात का पता चल गया कि मेरा किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है तो तुम क्या करोगी? अरुणिमा की नजरें झुकी हुई थी लेकिन आस्तिक के इस सवाल पर वो हैरानी से उसे देखने लगती है। दो मिनट तक तो अरुणिमा को आस्तिक का सवाल समझ ही नहीं आया था लेकिन फिर उसने एक व्यंग भरी मुस्कान अपने चेहरे पर रखते हुए कहा, आप मुझसे कैसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हैं? अरुणिमा ने ये बात आस्तिक की आंखों में देखते हुए कही थी। अरुणिमा की आंखों का भार महसूस होते ही आस्तिक के दिल में कुछ पिघलता हुआ सा महसूस हो रहा था। अचानक से ही आस्तिक ने अरुणिमा की आंखों से संपर्क तोड़ा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है, बेहतर यही है कि जो तुम्हारे मन में है तुम वही जवाब मुझे दो। अरुणिमा अपना चेहरा हल्का सोचते हुए अंदाज में बनाती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझे आपको बेल्टों से पीटना चाहिए या फिर आपके जितने भी हथियार हैं उन सब का इस्तेमाल मुझे आपके ऊपर करना चाहिए या फिर मुझे आपको तब तक तड़पाना चाहिए जब तक आप ये ना मान लें कि आपसे गलती हुई है। आस्तिक बस अरुणिमा को गौर से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरुणिमा सच में ये करने की हिम्मत रखती है। अचानक से आस्तिक की आंखें हैरानी से छोटी हो गई, क्योंकि अरुणिमा हंसने लगी थी, लेकिन इस हंसी में मजाक नहीं था बल्कि व्यंग था। अरुणिमा खुद पर हंस रही थी। अरुणिमा हंसते हुए आस्तिक को देखती है और कहती है, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ राजा साहब, हमारी शादी की कोई बुनियाद ही नहीं है। अगर आप किसी दूसरी औरत को घर लेकर भी आ जाएंगी तो मैं क्या ही कर लूंगी। आपके साथ इतने समय से रहते रहते आपने मुझे इतना तो सिखा ही दिया है कि मुझे हर चीज बस सहन करना है। मैं उसका विरोध नहीं कर सकती हूँ। जहाँ मैंने इतनी सारी चीज बर्दाश्त की है, वहां पर ये भी कर लूंगी। किसी औरत के लिए मर जाने के समान होता है जब उसका पति उसकी आंखों के सामने किसी दूसरी औरत को लेकर आता है। तो अगर आप किसी दूसरी औरत को लेकर आएंगी तो मैं क्या उम्मीद करूंगी? यही कि अब आप मुझे कोई दर्द और यातना नहीं देंगे, या फिर आप उस दूसरी औरत को भी यही दर्द और यातनाएं देंगे। यकीन मानिए राजा साहब, अगर आपकी दूसरी पत्नी इस महल में सारे ऐशो आराम से रहेगी और रानी बनकर राज करेगी तो मुझे खुशी होगी कि चलो जो मुझे ना मिल सका वो किसी और को तो मिला है। लेकिन अगर उसने भी मेरी तरह ही दिन गुजारे तो मुझे उससे ज्यादा बदनसीब औरत इस दुनिया में नहीं नजर आएगी, और एक औरत होने के नाते मैं उसका दर्द अच्छी तरह से समझूंगी।